समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमालय से पुकार है उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नव अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। सुप्रसिद्ध कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियां समर्पित हैं उन सभी वीर शहीदों को जिन्होंने भारत को स्वाधीन करने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। यही दिन था जब तीन महान राष्ट्रनायकों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने अपने को बलि वेदी पर अर्पित कर दिया था। इन वीरों ने देश के हर जनगणमन में स्वाधीनता की अग्नि जलाकर उसमें स्वयं को तपाकर देश को जो दिया उसके लिए हम उन्हें नमन करते हैं। इसी भाव के साथ आरंभ करते हैं आज सवेरे कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम आप सुनेंगे देवेंद्र त्रिपाठी और सायरा मुस्तफा के साथ। नमस्कार सायरा।
नमस्कार देव, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ आवर सवेरे। एंड यस, द नेशन इज पेइंग ट्रिब्यूट टू भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव ऑन शहीद दिवस टुडे। On this day in 1931, the revolutionary leaders were hanged to death by the British in the Lahore jail for their activities against the empire. They were hanged a day before the scheduled date of execution. A number of programs are being organized in Punjab and the rest of the country to mark this day. And Dave, I'm sure लोगों को भी याद होगा कि भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव की मंशा लोगों को तकलीफ पहुंचाना या चोट पहुंचाना, किसी को मारना नहीं थी। They said that हमने बॉम्ब फेंका ताकि जो बहरे हैं वो सुन
सके, उन तक आवाज पहुंच सके।
Yes. So indeed we are remembering these three remarkable revolutionary leaders, and especially if we talk about Bhagat Singh, if dear listeners you have time, please take out time to read his writings. I think at such a young age he has written such a prudent and full of wisdom, his writings they are infused with, isn't it?
Right.
Let's start with the headlines, please.
जी, शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री का भूटान दौरा इस समय चल रहा है। भारत और भूटान के बीच आज आपसी साझेदारी को और मजबूती प्रदान करने के लिए आपसी हित के कई समझौते पर कल हस्ताक्षर हुए। थिम्पू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों के बीच पेट्रोलियम और तेल की आपूर्ति, ऊर्जा दक्षता में सहयोग, खेल और युवाओं तथा औषधीय उत्पादों के परीक्षण से संबंधित कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष सहयोग पर एक संयुक्त कार्य योजना पर भी सहमति बनी। भारत के राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क और भूटान के ड्रूक रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क के बीच सहकर्मी समझौते के नवीनीकरण का भी आदान प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थिम्पू में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे से भी बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, और दोनों देशों ने तालमेल और सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए भी सहमति व्यक्त की है। प्रधानमंत्री की राजकीय यात्रा पर संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि भारत और भूटान जल विद्युत, सौर और हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी का विस्तार जारी रखेंगे और इस क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए मिलकर नई परियोजनाएं विकसित करेंगे। दोनों देशों ने सीमा पार माल और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही, रेल संपर्क, सड़क, वायु, जलमार्ग, व्यापार और बुनियादी ढांचे सहित आर्थिक तथा डिजिटल कनेक्टिविटी सहित आपसी संपर्क बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। प्रधानमंत्री मोदी का आज भूटान दौरे का अंतिम दिन है। श्री मोदी आज थिम्पू में ग्यालसुएन देत्सुन पेमा मातृ एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। ये एक अत्याधुनिक अस्पताल है जो थिम्पू में भारत की सहायता से निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो से सम्मानित किया गया। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने थिम्पू में प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि ये उनके जीवन का बहुत बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि हर पुरस्कार अपने आप में विशेष होता है, परंतु जब दूसरे देश से पुरस्कार मिलता है तो इससे मालूम चलता है कि दोनों देश सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दोपहर थिम्पू के ताशी छोड़जोंग पैलेस में भूटान नरेश के साथ कल बातचीत की। दोनों नेताओं ने भूटान और भारत की मित्रता को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और उन्हें नए स्तर पर ले जाने के तरीकों पर भी चर्चा की।
एंड दिल्ली के सियासी हलकों में बड़ी उथल पुथल मची है. सो आवर नेक्स्ट न्यूज इज यस रिगार्डिंग द पॉलिटिकल जर्नीज हैपनिंग इन द कैपिटल. वेल फॉलोइंग द अरेस्ट ऑफ द दिल्ली चीफ मिनिस्टर द ऑपोजिशन हैज सॉट इलेक्शन कमीशन इंटरफेरेंस. An all-party opposition delegation, which met the full body yesterday, said that they had presented evidence of agency's alleged misuse against the opposition. They emphasized that this is the first instance in the history of independent India where a sitting chief minister has been arrested. Leaders from Congress, TMC, DMK, the left, Samajwadi Party and others were part of the delegation.
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कदाचार में लिप्त होने के कारण 20 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है. इनमें दिल्ली के 5 स्कूल भी हैं. बोर्ड ने एक अधिसूचना में कहा है कि औचक निरीक्षण के दौरान संबद्धता और परीक्षा मानदंडों के पालन में विसंगतियां पाए जाने के बाद कड़ी कार्रवाई की गई है. सीबीएसई ने कहा कि ये स्कूल डमी छात्रों, अयोग्य उम्मीदवारों को पेश करने जैसे विभिन्न कदाचार कर रहे थे और रिकॉर्ड ठीक से नहीं रख रहे थे.
The Election Commission has appointed new district magistrates for 4 districts of West Bengal. The poll body had ordered the transfer of district magistrates of Purva Mednipur, Jhargram, Purva Bardhaman and Birbhum district ahead of the Lok Sabha elections. In some international news, in Russia at least 40 people were killed and more than 100 were injured after armed attackers opened fire inside a popular concert venue complex near capital Moscow. Russian state media TASS or TASS reported that 3 armed men opened fire inside the Crocus City Hall concert venue on the outskirts of Moscow. A SWAT team was called to the area and more than 70 ambulance teams and doctors were assisting the victims. A large fire has engulfed the roof of the complex and Russian special forces have been deployed to the scene. According to TASS, around 100 people were evacuated from the building by the firefighters. Regional Governor Andrei Vorobyov said everything was being done to save the people. The United States said it is working to find out more about the situation and Ukraine has denied any involvement in the attack.
श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग श्रीलंकाई प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ 26 मार्च को कोलंबो में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई पर एक सम्मेलन का आयोजन करेगा. श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान मुख्य भाषण देंगे. इसके बाद एक्सेलरेटिंग डिजिटल श्रीलंका और अनलॉकिंग द डिजिटल स्टैक पर चर्चा होगी. सत्रों में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के उपयोग के मामलों पर भी चर्चा की जाएगी. इसमें स्टार्टअप डोमेन और प्रौद्योगिकी बाजार तथा सुशासन पर विचार विमर्श होगा. सम्मेलन के दौरान इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुशासन को कैसे सरल बनाकर नागरिकों के लिए पहुंच में सुधार करता है. दोनों पैनलों में भारत और श्रीलंका के विशेषज्ञ डिजिटल बुनियादी ढांचे और सुशासन पर विभिन्न क्षेत्रों और दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करेंगे.
On to sports now. In badminton, Indian star Shuttle Kidambi Srikanth stormed into the men's singles semi-finals of the Swiss Open tournament at Basel in Switzerland. Kidambi brushed past Li Xiaohao of Chinese Taipei in quarterfinals last evening. He will take on Lin Chun-Ki, the Chinese Taipei tonight for a place in the final. In other quarterfinal matches, Priyanshu Rajavat lost to Tian Chan Chao, while Kiran George went down against Denmark's Rasmus Gamke. And in cricket, the inaugural match of the 17th edition of IPL or Indian Premier League, the defending champions Chennai Super Kings beat Royal Challengers Bangalore by 6 wickets in Chennai last night. Chasing the target of 174 runs, Chennai Super Kings overhauled the target with 6 wickets in hand and 8 balls to spare. Earlier, opting to bat first, Royal Challengers Bangalore posted 173 for 6 in the stipulated 20 overs. The tournament kicked off with a star-studded opening ceremony at the M.E. Chidambaram Stadium in Chennai. Today, Punjab Kings will take on Delhi Capitals in Mohali at 3:30 p.m., while Kolkata Knight Riders will face Sunrisers Hyderabad in Kolkata at 7:30 p.m.
और मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने 26 मार्च तक पूर्वोत्तर भारत में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है. विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के उपहिमालयी क्षेत्रों में गरज के साथ तेज वर्षा होने की संभावना है. इधर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी मौसम बदला हुआ है या बदलेगा और मैदानी इलाकों में एक दो स्थानों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है. बिहार में हल्की से मध्यम बारिश के साथ आंधी भी चल सकती है, खासतौर पर उत्तर पूर्वी बिहार के क्षेत्रों में. इस बीच अगले 5 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु तथा पुद्दुचेरी सहित दक्षिण भारत के कई हिस्सों में मौसम के गर्म रहने की संभावना है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बाद हम चलते हैं अपने महानगरों की तरफ और जानते हैं देश के प्रमुख महानगरों से क्या खास खबरें हैं। तो सायरा, क्या खबरें हैं आपके पास चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से?
Well, Dave, let's start with Shahar Chennai. The latest announcement of the Indian Institute of Technology Madras includes higher secondary students who studied subjects other than math to apply for online BS degree data science. The institute has called for applications for undergraduation in electronic systems program as well. Professor Vignesh said that students don't need to have math, physics and chemistry in their class 12 and math in class 10 was enough to apply for these courses. Students who have completed class 11 are also eligible to apply. He said that last year the institute had received 40,000 applications. Moving on to Bengaluru, the Jal Jeevan Mission Chair and Office at IIM Bangalore in collaboration with UNICEF and the Sri Kshetra Dharmasthal Rural Development Project or SKDRDP organized a national seminar on water conservation at the IIMB campus in Bengaluru. With the ongoing water crisis in Bengaluru, the seminar shed light on initiatives and collaborative projects across the region that have achieved a large-scale impact in reviving water bodies, increasing access to clean water and mobilizing community support. Delivering the opening address at the seminar, Professor Gopal Nayak, Jal Jeevan Mission Chair and Professor, IIM Bangalore, said, "Rapidly rising water scarcity is a reality in India and is expected to worsen in the coming years." He said that through education, outreach and financial incentives, we can empower individuals, communities and institutions to acquire and develop water-efficient habits and technologies. Another news coming in from Bengaluru, the World Water Day was celebrated in Bengaluru yesterday. In his message to the gathering, Bengaluru Water Supply Company, BWSSB Chairman, Dr. Ram Prasad Manohar, appealed to the scientist community to find a solution for water scarcity in Bengaluru. He said on this day of International Water Day, the scientists in different research institutions and students should take a pledge to conserve the environment. He informed that a resolution is taken to make Bengaluru water-sufficient city by 1st of July 2026. In this regard, parameters are being set for saving water, increasing water treatment and recharging groundwater. He sought the support of Bengaluruans in this endeavour. He further added that essential steps will be taken for judicious utilization of natural resources. This will ensure its benefits to the next generation. And moving on to Hyderabad, in Hyderabad, Section 144 has been imposed since yesterday ahead of the Lok Sabha polls in the state. Hyderabad Commissioner of Police, Kota Kota, Srinivas Reddy, informed that the decision in this regard has been taken to uphold public order and peace across Hyderabad and Secunderabad. As part of Section 144, residents are banned from carrying licensed arms throughout the election period. The issuance of new arms licenses is suspended and any display of arms during political rallies or gatherings in support of candidates is strictly prohibited. Hyderabad will vote with the rest of Telangana in the fourth phase of the general elections on 13th of May and counting of votes will take place on the 4th of June.
और दिल्ली की खबरों का रुख करें, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता का, तो दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में कल आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहर के विभिन्न भागों में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पार्टी नेता और दिल्ली के मंत्रियों सौरभ भारद्वाज, आतिशी और गोपाल राय सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस दौरान गिरफ्तारी के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस बीच दिल्ली पुलिस के निर्देश के अनुसार राजधानी के आईटीओ और लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशनों को कल अगले आदेश तक बंद कर दिया गया। इससे पहले डीएमआरसी ने आईटीओ मेट्रो स्टेशन को सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक बंद रखने के आदेश दिए थे। राजधानी में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लागू आदर्श आचार संहिता को देखते हुए दिल्ली नगर निगम ने कई इलाकों से पोस्टर, बैनर और होर्डिंग को हटाने का काम किया है। इस कार्रवाई के तहत निगम के विभिन्न इलाकों में अब तक 21,000 से अधिक पोस्टर और 3,000 से अधिक बैनर हटाए गए हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों के लिए 6 चरण में 25 मई को मतदान होगा। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के संचालित सेक्शनों में नमो भारत ट्रेन की सेवाएं होली के दिन सोमवार को शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक उपलब्ध रहेंगी। दोनों तरफ से पहली ट्रेन शाम 4 बजे चलेगी और आखिरी ट्रेन टर्मिनल स्टेशनों यानी साहिबाबाद और मोदीनगर नॉर्थ से रात 8 बजे प्रस्थान करेगी और राजधानी में होली के दिन यानी सोमवार को दिल्ली परिवहन निगम की बसें दोपहर 2 बजे तक नहीं चलेंगी। हालांकि रविवार को होलिका दहन के दिन सभी बसें अपने निर्धारित समय पर चलेंगी। और मुंबई का रुख करें तो महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को भूषण गगरानी की जगह इकबाल सिंह चहल को मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रभारी अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया है। ये निर्णय निर्वाचन आयोग द्वारा बुधवार को राज्य सरकार को गगरानी को नया बीएमसी आयुक्त नियुक्त करने का निर्देश देने के बाद आया है। मार्च में लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद आयोग ने राज्य सरकार को चहल, अन्य नागरिक आयुक्तों और अतिरिक्त या उपनगर आयुक्तों को स्थानांतरित करने का आदेश दिया था जिन्होंने 3 साल से अधिक समय तक सेवा की है। बृहन्मुंबई नगर निगम ने रविवार को और सार्वजनिक अवकाश के दिन मुंबई के सभी 25 वार्डों में अपने नागरिक सुविधा केंद्रों को खुला रखने का निर्णय लिया है। आगामी सप्ताह संपत्ति कर वसूली का आखिरी सप्ताह है और आखिरी सप्ताह में होली, रंगपंचमी और गुड फ्राइडे जैसे त्यौहार हैं। इससे नागरिकों की सुविधा के लिए बीएमसी के कर निर्धारण विभाग के सभी कर्मचारी वार्ड कार्यालय में मौजूद रहेंगे। वे लोगों की सहायता करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। बृहन्मुंबई नगर निगम ने मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण एमएमआरडीए को 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अधिकारियों के मुताबिक ये फंडिंग उस 5,000 करोड़ रुपए का हिस्सा है जिसकी एमएमआरडीए बीएमसी से उम्मीद कर रही है। अधिकारी ने यह भी कहा कि बीएमसी से 1,000 करोड़ रुपए का अनुदान मुख्य रूप से मेट्रो रेल मार्गों के निर्माण के लिए किया गया है। मालेगांव 2008 विस्फोट मामले में विशेष अदालत ने शुक्रवार को भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ जारी जमानती वारंट रद्द कर दिया है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर को 20 मार्च को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां से छुट्टी मिलने के बाद प्रज्ञा सिंह ठाकुर अदालत में पेश हुई जिसके बाद वारंट रद्द कर दिया गया। और चलते हैं कोलकाता। आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल में राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार पूरी तरह से प्रचार अभियान में लग गए हैं। तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख नेता और महासचिव अभिषेक बंदोपाध्याय ने कल पूर्व वर्धमान जिले में कटवा में एक सार्वजनिक रैली में हिस्सा लिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सुकांतो मजुमदार अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बालुरघाट की जनसभा में शामिल हुए जबकि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बरहामपुर में प्रचार किया। कांग्रेस ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में अपने 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। पश्चिम बंगाल में बशीरहाट उप प्रमंडल न्यायालय ने कल शेख शाहजहां को 6 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। 9 लोगों को अदालत में पेश किया गया था। आरोपियों को प्रवर्तन निदेशालय के दल पर 5 जनवरी को हमला करने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। और अब बात कर लेते हैं महानगरों के मौसम की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय तमाम जगहों पर तापमान बढ़ रहा है, गर्मी भी बढ़ने वाली है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज अधिकतम तापमान बढ़ते हुए 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। हालांकि न्यूनतम तापमान अभी भी नियंत्रण में है और 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा, अधिकतम 35 डिग्री रिकॉर्ड किया जा सकता है और कोलकाता में भी न्यूनतम तापमान 23 अधिकतम 34 डिग्री के बीच रहेगा। शहर में आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। और सायरा, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद का मौसम आप बताएं कैसा रहने वाला है?
वेल देयर, चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद, ऑल दीज 3 सिटीज विल हैव अ पार्टली क्लाउडी स्काई टुडे। इफ यू टॉक अबाउट द टेम्परेचर्स, इन चेन्नई द टेम्परेचर्स विल हॉवर बिटवीन 25 एंड 33 डिग्री सेल्सियस, वाइल इन बेंगलुरु द टेम्परेचर्स विल हॉवर बिटवीन 21 एंड 33 डिग्री सेल्सियस। इन हैदराबाद द टेम्परेचर विल हॉवर बिटवीन 21 एंड 36 डिग्री सेल्सियस।
और अब याद करते हैं इतिहास की उन महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बात करते हैं जो आज के दिन इतिहास में दर्ज हुई हैं। वर्ष 1940 में आज ही के दिन मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और 1956 में इसी दिन पाकिस्तान दुनिया का पहला इस्लामिक गणतंत्र बना था।
ऑन दिस डे इन 1313 फिरोज शाह तुगलक, हु वाज द नेफ्यू ऑफ मोहम्मद तुगलक, ही सक्सीडेड एज द एम्परर ऑफ दिल्ली। In 1942, Japanese forces occupied Rangoon, the Andaman Islands in the Indian Ocean. In 1947, Lord Mountbatten was sent as a viceroy to India, who was designated to free India.
जी, और 1965 में नासा ने पहली बार अंतरिक्षयान जेमिनी 3 से 2 व्यक्तियों को अंतरिक्ष में भेजा था। 1986 में आज के दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की पहली महिला कंपनी दुर्गापुर में गठित की गई थी।
And on this day, 1994, Kapil Dev played his last Test cricket. Also,
जी, और 1995 में रेंटो रुगियेरो विश्व व्यापार संगठन के पहले महानिदेशक नियुक्त किए गए और भारत के विश्वनाथन आनंद ने प्रोफेशनल चेस एसोसिएशन कैंडिडेट्स की फाइनल श्रृंखला को आज ही के दिन 1995 में ही जीता था।
And on this day in 1998, James Cameron's you can say magnus, you know, epic drama Titanic, it was released in 1997. It won 11 Academy Awards, tying the record set by Ben-Hur in 1959.
1996 में ताइवान में पहला प्रत्यक्ष राष्ट्रपति चुनाव हुआ जिसमें ली टेंग हुई राष्ट्रपति बने।
And on this day in 2021, the Suez Canal, which is one of the world's most heavily used shipping lanes, was blocked after the mega freighter Ever Given ran aground. It took 6 days to move the vessel.
जी, और आज विश्व मौसम विज्ञान दिवस है। प्रतिवर्ष 23 मार्च को ये दिन मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1950 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है और सायरा जब स्थापना हुई थी तो कुछ ही देश मेंबर थे, लेकिन आज के समय में 187 देश इस संगठन के सदस्य बन चुके हैं और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। संगठन की स्थापना का उद्देश्य मौसम से होने वाली आपदाओं को नियंत्रण में करने के लिए समग्रता में प्रयास करना और लोगों में जागरूकता लाना है। बाढ़, सूखा और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा का अनुमान अब मौसम पूर्वानुमान के दायरे में है। इसका उपयोग नाविकों, समुद्री जहाजों और उन लोगों द्वारा भी किया जाता है जो सड़क एवं विमान यातायात का प्रबंधन संभालते हैं। मौसम पर्यवेक्षण टावरों, मौसम गुब्बारों, रडारों, कृत्रिम उपग्रहों, उच्च क्षमता वाले कंप्यूटरों और भिन्न भिन्न अंकगणितीय मॉडलों से मौसम की स्थिति को समझने में मदद मिलती है और मौसम को संतुलित रखने में लोग मिलकर प्रयास करते हैं ताकि हमारी जो वसुंधरा है वो हरी भरी और सुरक्षित बनी रहे।
हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, जिसके बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रहे उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन।
बहुत खूबसूरत रचना है धरती पूरे ब्रह्मांड में और इसको सुरक्षित संरक्षित बनाए रखने की जिम्मेदारी दुनिया के हर एक नागरिक की है, सिर्फ सरकारों या एजेंसियों की नहीं है, हमें भी प्रयास करना होगा। और अब याद करते हैं उन महान व्यक्तियों को जिनकी या जयंती, पुण्यतिथि या जन्मदिन है और जिन्होंने अपने विचारों कार्यों से समाज को प्रभावित और प्रेरित किया और करते रहेंगे। इस क्रम में सबसे पहले याद कर रहे हैं तीन महान राष्ट्रनायकों, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, जो ऐसे देशभक्त थे जो भारत की स्वाधीनता की वेदी पर खुद को आहूत कर राष्ट्रभक्ति का पर्याय बन गए। जिस समय देश विदेशी दासता का शिकार था और विदेशी शासन देश के हर नागरिक का दम घोट रहा था, उस समय अपने अंजाम की परवाह किए बिना भगत सिंह ने अपने साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ क्रांति की जो अलख जगाई, उसने देश के युवाओं को स्वाधीनता के लिए मर मिटने के लिए प्रेरित कर दिया। इन तीन महान राष्ट्र प्रेमियों की स्मृति में ही 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है।
यस इंडीड, देव भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, ऑल थ्री ऑफ देम बिकेम अ यूथ आइकॉन आई वुड से, एंड वेल दे पार्टिसिपेटेड इन द मिस्टेकन मर्डर ऑफ अ जूनियर ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर इन दिसंबर 1928 इन व्हाट वाज टू बी द रिटेलिएशन फॉर द डेथ ऑफ एन इंडियन नेशनलिस्ट। When Bhagat Singh later took part in a largely symbolic bombing of the Central Legislative Assembly in Delhi and a hunger strike in jail, which, on the back of sympathetic coverage in Indian-owned newspapers, turned him into a household name, especially in the Punjab region, and after his execution at the age of 23, into a martyr and folk hero in northern India.
जी, और जैसा कि आपने कहा था कि उन्होंने जब assembly में बम फेंका, तो बम फेंकने का उद्देश्य ये नहीं था कि किसी को नुकसान हो, कोई मारा जाए, बल्कि ये तीनों क्रांतिकारी या उस समय के जितने क्रांतिकारी समूह में थे, सभी का उद्देश्य सिर्फ ये था कि देश भर में उनकी आवाज या आक्रोश की खबर फैलनी चाहिए और हिंदुस्तानी जागें और इस विदेशी दास्तां को खाड़ फेंकने के लिए एकजुट हो जाएं।
यस, भगत सिंह स्पेशली ही बोरोड आइडियाज फ्रॉम बोल्शेविज्म एंड The charismatic Singh electrified a growing militancy in India because he was against a very much non-violent approach. Unhone ne kaha tha ki like you know, jaise hum log keh rahe the ki behron ko agar hume apni awaaz un tak pahunchana hai to ye uske liye tha. And but nonetheless, it prompted urgent introspection within the International Congress at that time about the non-violent nature of the independence. But eventually, yes, we all know that India gained independence. Nonetheless, the contributions of Bhagat Singh, Rajguru, and Sukhdev remain remarkable.
जी और सायरा मैं उस घटना का जिक्र जरूर करना चाहूँगा जिसके चलते जिसके आरोप में इन तीनों क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था और ये घटना थी 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए जो उग्र प्रदर्शन हुआ उसमें लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई और इस घटना ने भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को आक्रोशित कर दिया था और इन्होंने सुपरिंटेंडेंट पुलिस को मारने की योजना बनाई। 17 दिसंबर 1928 को करीब 4:15 बजे एसपी सैंडर्स के आते ही राजगुरु ने एक गोली सीधे उसके सर में मारी जिसके बाद वो बेहोश हो गया। इसके बाद भगत सिंह ने 3-4 गोलियां दागकर उसके मरने का पूरा इंतजाम किया और इसके बाद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव हावड़ा ट्रेन में बैठकर लाहौर से निकलने में सफल हो गए। राजगुरु को बाद में पुलिस ने पुणे से गिरफ्तार कर लिया और इस षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप में भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दे दी गई।
चोला मेरा रंग दे ओ मेरा रंग दे बसंती चोला ओए रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे
Yes, in still later years, Bhagat Singh, who was actually an atheist and socialist by nature in adulthood, he won admirers in India from among a political spectrum that included both communists as well as non-communists. And also many of his associates as well as many Indian anti-colonial revolutionaries were also involved in daring acts and were either executed or died violent deaths. Few came to be, you know, iconized in popular art and literature as was Bhagat Singh, who is sometimes referred to as the Shaheed-e-Azam.
जी और स्वतंत्रता सेनानी प्रखर चिंतक तथा समाजवादी राजनेता राम मनोहर लोहिया की आज जयंती है। राम मनोहर लोहिया को भारत एक अजेय योद्धा और महान विचारक के रूप में देखता है। देश की राजनीति में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और स्वतंत्रता के बाद ऐसे कई नेता हुए जिन्होंने अपने दम पर शासन का रुख बदल दिया और उन्हीं में एक थे राम मनोहर लोहिया। अपनी प्रखर देशभक्ति और बेलस तेजस्वी विचारों के कारण अपने समर्थकों के साथ ही डॉक्टर लोहिया ने अपने विरोधियों के मध्य भी अपार सम्मान हासिल किया। डॉक्टर लोहिया सहज लेकिन निडर अवधूत राजनीतिज्ञ थे। उनमें संत की संतता कृपण मस्ती निर्लिप्तता और अपूर्व त्याग की भावना थी। डॉक्टर लोहिया मानव की स्थापना के पक्षधर समाजवादी थे। वे समाजवादी भी तथ्य में थे कि समाज ही उनका कार्यक्षेत्र था और वे अपने कार्यक्षेत्र को जन मंगल की अनुभूतियों से महकाना चाहते थे। वे चाहते थे कि व्यक्ति व्यक्ति के बीच कोई भेद कोई दुराव और कोई दीवार न हो, सब जन समान हो। और आज ही बसंती देवी की जयंती है। वे स्वतंत्रता सेनानी थीं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किए गए असहयोग आंदोलन में भी सम्मिलित हुई थी बसंती देवी। लोगों में खादी का प्रचार करने के अभियोग में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। लोगों ने बसंती देवी की गिरफ्तारी का बहुत विरोध किया। देश के अनेक प्रमुख वकीलों ने भी इसके विरोध में आवाज उठाई और मामला वायसराय तक पहुंचा, जहां इसके बाद सरकार ने उन्हें मजबूर होकर रिहा किया। जेल से बाहर आने पर भी बसंती देवी ने विदेशी शासन का विरोध जारी रखा। ये देश के विभिन्न स्थानों पर गईं और लोगों को स्वतंत्रता सेनानी और अपने पति चित्तरंजन दास के राजनीतिक विचारों से परिचित कराती रहीं। 1922 में चित्तरंजन दास, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस आदि गिरफ्तार किए गए। चित्तरंजन दास को तटगांव राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता करनी थी, परंतु उनकी गिरफ्तारी पर बसंती देवी ने स्वयं इस सम्मेलन की अध्यक्षता की।
That's right. It is also the death anniversary of Elizabeth Taylor, a very popular actress of Hollywood of yesteryears. In fact, she became the world's highest paid movie star in the 60s, remaining a well-known public figure for the rest of her life. and we don't have much time on our hands, Dev, so it's time to wrap up.
जी, तो दीजिए अनुमति आज सवेरे कार्यक्रम यही संपन्न करने के, लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड. और सभी से अनुमति लेना चाहेंगे और नमस्कार.
नमस्कार.